जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधूणं अर्हंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिन को स्वरूप जान राग तिन भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम्हारी काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख है तो हम चाहत है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चारों योग वितराग भाव के पोषक हैं, प्रतिपादक हैं, प्रेरक हैं। आप यूं समझिए वितराग भाव ही द्वाद सांग की आत्मा है। यदि वितराग भाव का पोषण नहीं है, उसकी प्रेरणा नहीं है, उसमें उपाधि बुद्धि की चर्चा नहीं है, तो वो जिनवाणी है ही नहीं। और द्वादसांग वाणी ही चारों अनियोगों में प्रस्तुत की गई है। इसी बात को आधार बनाकर ये बहुत मार्मिक विषय यहाँ मोना द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अपन लोगों को इसकी खास जरूरत है, न केवल अपने को बल्कि सारी स्वाध्यायी समाज, क्योंकि प्रायः ये देखा जाता है कि किसी की रुचि किसी अनुयोग विशेष में है और उसका वो गहन अभ्यास करते हैं, लेकिन दूसरे अनुयोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण और आदर भाव वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। इसका संकेत पंडित टोडरमल जी ने भी किया है कि किसी अनुयोग को हे समझे या व्यर्थ समझे तो उसे जिनवाणी की व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है, व्यवहार सम्यक ज्ञान भी नहीं है। समझ लीजिए, ये तो हो सकता है कि क्षयोक्षम ज्ञान की योग्यता हरेक की जुदी जुदी होती है, तो किसी को कोई अनुयोग में ज्यादा गहराई से अभ्यास हो वो उसका विशेषज्ञ हो, अन्य अनुयोगों का उतना गहरा अभ्यास ना हो, ये तो संभव है। परंतु उसकी दृष्टि में उसकी रुचि में चारों अनुयोग के प्रति ये जिनवाणी है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ऐसी महिमा उसके अंदर बराबर रहती। तो हमको भी ये समझना चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री के उदय के पहले यानी जब वो दिगंबर समाज के परिचय में आए, उनकी वाणी का प्रचार प्रसार बढ़ा। आदमी समझ लीजिए गुरुदेव युग के पहले समाज में एक न्याय ग्रंथों की पढ़ाई और करणानुयोग की भी चर्चा, और जो रोज शास्त्र सभाएं होती थी उसमें प्रथमानुयोग का कोई पुराण ले लिया या ये चरणानुयोग संबंधी ग्रंथ हो गए। लेकिन जो अध्यात्म की रस भरी चर्चा है उसका एक तरह से देखा जाए तो सूखा ही पड़ा था, अभाव ही था। ये तो गुरुदेव श्री ने भारत भूमि को अध्यात्म रस से सींचा, उसे उपजाऊ बनाया माटी को, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उनके प्रभावना योग में खड़े हो गए कि अध्यात्म रसिक हजारों लाखों समझ लो साधारणी भाई बहन उत्पन्न हो गए बड़े, अभी तो विद्यालयों के माध्यम से युवा वर्ग में भी ये संस्कार सिंचित हो रहे। अध्यात्म और चरणान योग का अत्यंत सुंदर समन्वय है। अध्यात्म अगर सॉफ्टवेयर है तो चरणान योग हार्डवेयर है, ये मैंने पहले ही दिन कहा था, और इसी बात के आधार से अपन चार दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने ये वितरा विज्ञान पाठमाला के तीसरे भाग में ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों के आधार से चर्चा प्रारंभ की है, आज उसे ही आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गुणव्रत और शिक्षा व्रत 12 व्रतों को 3 ग्रुप में उन्होंने बांटा, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, अथवा युग कहते हैं 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, ऐसे भी नाम इन सातों का एक ग्रुप बना के उनकी चर्चा आती है। हमें ये देखना है कि जिस तरह 5 अणुव्रतों में एक वितराग भाव का जो अंश है और उसके साथ में जो रागांश है, देखिए वितराग भाव के निमित्त से कोई बाह्य क्रिया नहीं होती, क्या बोला, उसमें तो अंतर्मुख मुद्रा होती है, जो परिपूर्ण वितरागी हो गए तो अंतर्मुख मुद्रा है, अनंत चतुष्टय है, यही अनंत भगवान की क्रिया है। लेकिन अगर रागांश शेष है तो उस रागांश के निमित्त से बाह्य में संयम की, व्रतों की, शील की ये क्रियाएं सहज होती। ये साधक की भूमिका की बात है। आदमी समझ लीजिए चरणान योग का जो क्राइटेरिया है, सम्यक सन्मुखता से लेकर छठवें गुण स्थान तक का उसकी वो पढ़ाई का सिलेबस में आएगा, साथ में गुण स्थान की चर्चा नहीं होगी उसमें, क्योंकि उनकी कोई बाह्य क्रिया होती नहीं। सातवां गुण स्थान जो निर्विकल्प दशा है उसमें अबुद्धि पूर्वक राग होता है, यानी संजनन कषाय का अति महामंद उदय होता है, तो उनको ही पता नहीं चलता है कि मुझे किस जाति का राग हो रहा है। यद्यपि उस गुण स्थान का काल बहुत थोड़ा है, गुरुदेव के कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कितना 0.25 सेकंड का आधा भाग, वो काल बहुत थोड़ा है, तो तुरंत छठवे में आ जाते हैं, तो वो जो जैसे झूला झूलते हैं इस पार उस पार, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कब सातवां हो गया कब छठवां हो गया, अपने को दूसरों को। इसलिए उनके रागात्मक क्रियाएं जो देखी जाती हैं, लेकिन उसमें निमित्त बुद्धिपूर्वक राग बनता है, विकल्प आता है, आज आहार के लिए निकलना है तो आखड़ी लेंगे, शुद्धि करेंगे, इरिया कोई नियम लेंगे, इरिया समिति से चलेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे कि सामने वाला नौधा भक्ति कर रहा है या नहीं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कितना कमजोर राग है उनका आहार करने का भी, वो राग इतना कमजोर है कि यदि दाता की नवधा भक्ति में कोई उन्हें कमी दिखाई देती है तो ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो यथोचित भक्ति भाव होना चाहिए वो नहीं, इसके अंदर कोई टेंशन है, कोई बोझा है, कोई मजबूरी में हार दे रहा है, इसलिए तो भूल रहा है। समझ में आए, भूल क्यों हो रही है, क्योंकि इसका मन इधर एकाग्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आहार देने के प्रति जो भक्ति भाव मोक्ष मार्ग के प्रति, चारित्र के प्रति, चारित्र बंधों के प्रति जो उछलना चाहिए वो इसको नहीं है, तो उनके स्वयं के आहार का विकल्प टूट जाता है, इतना कमजोर विकल्प होता है। तो अंतराय, इसी को तो अंतराय कहते हैं, अंतराय माने क्या, हैं, जैसे फोन चलता है और कॉल ड्रॉप हो जाता है तो अंतराय आ जाता है, तो बीच में बात टूट जाती है। ऐसे उनका भी वो आहार का जो विकल्प था वो टूट गया। आप बारीकी से प्रत्येक क्रिया की स्टडी करेंगे अपन, चाहे वो पंचम गुण स्थान वर्ती श्राव की 11 प्रतिमाओं की हो, चाहे वो महावृत्तियों की क्रिया हो, वो क्या क्यों और कैसे, इस कसौटी पर कसकर यदि हम उन क्रियाओं की स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि अंदर में कितना उनका लागान शेष रहा, किस जाति का है और उसके साथ में वीतरागता का अंश है। क्योंकि राग अंश कहते ना, राग अंश मतलब पूरा राग नहीं है, पूरा राग तो मिथ्या दृष्टि को होता है, पूरे वीतराग अनंत परमात्मा होते हैं, बीच में तो दोनों धाराएं चलती हैं, ज्ञान धारा और राग धारा, कर्म धारा भी बोलते है। अब देखिए दिग्व्रत में पहली पंक्ति 25 पेज पर, कषायांश कम हो जाने से ग्रस्त दसों दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता, इसे दीर्घव्रत कहते। मेरा एक सुझाव है, यदि आपको चरणानुयोग में वीतरागता देखनी हो तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रसाद सिद्धि उपाय के प्रवचन सुने आप। हमारे यहाँ एक बार चलाए, हमारे अमृत भाई को इतने पसंद आए कि उन्होंने दोबारा वो सीरीज चलाई, कंटिन्यू दोबारा रखे, यार इसको तो एक बार और चलाना थी, समय सार तो 5-6 दफे चल गया होगा, आज जो 5 समय सार सिद्धि के माध्यम से। लेकिन आप देखेंगे जब जब ये दिग्व्रत देशव्रत इत्यादि का प्रकरण आता है या मधुमास मध्य के त्याग की बात आती है तो उसको गुरुदेव कैसे, समझ लीजिए अध्यात्म रस को मैं घोल करके वो विषय प्रस्तुत करते, तो उन्हीं से समझ लो अपने को सोचने समझने की दिशा मिली, प्रेरणा मिली कि कैसे अपन ये जिसको अज्ञान दशा में जो सिर्फ जल की क्रिया अथवा अज्ञान पूर्वक होने वाली मंद कषाय है उसके अलावा कुछ नहीं, मोक्ष मार्ग में जिसकी एक नए पैसे की कीमत नहीं है अज्ञान दशा में, और वो ही चीज जब भेद ज्ञान के साथ में चैतन्य के अनुभव के साथ में वो ही क्रिया और वैसी ही मंद कषाय होती है तो लोक में वो पूज्य हो जाती है। वो शरीर तो जड़ है ना, शरीर तो जड़ है ना, उसमें तो पूज्य तो नहीं है, लेकिन जिस शरीर के भीतर वीतरागी आत्मा रहता है, जिस आत्मा में वीतराग परिणति उछलती है, समझ में आया, 3 दशाए का अभाव है। ऐसे मुनिराज जब दर्शन भी मिल जाए तो महाभाग्य है, ऐसा भाव आता है। तो दर्शन तो शरीर के करेंगे, कोई आत्मा के तो करेंगे नहीं, कि आत्मा के लिए होते, आत्मा के निज आत्मा के दर्शन होते और निज आत्मा के दर्शन ज्ञान चक्षु से होते, वेद ज्ञान के चक्षु से होते, पर आत्मा के तो दर्शन होते ही नहीं। ऐसा लिखा है जैसे नचार देव में समोसरण में भी यदि जिनेन्द्र भगवान का आप उपदेश सुनेंगे तो वाणी ही तो सुनोगे, कोई वो हाथ में रख के आत्मा तो नहीं दिखा देंगे, ऐसा है। इसी तरह एक प्रकरण समझ लो चरणानुयोग में दान का है, श्रावकों की भूमिका में दान और पूजा ये दो प्रकार शुभ भावों की मुख्यता है। जो व्यापार धंधे में आजीविका में और अन्य विषय कषाय में अत्यंत व्यस्त होते हैं, ये भी पंचम काल का असंभव है कि दान और पूजा के अलावा स्वाध्याय ही हमारी दिनचर्या का अंग बन गया है। इसको कहते हैं गुरुदेव की आध्यात्मिक क्रांति, कि बिना स्वाध्याय के तत्व चर्चा के अब समझ लो भोजन हजम नहीं हो, ऐसा लगे कि आज जैसे नहाया नहीं हो या कोई जरूरी काम नहीं किया हो, हैं? तो लेकिन जिनागम में दान और पूजा की मुख्यता की है, क्योंकि पूजा के निमित्त से ही श्रावकों को विकराल भाव के समागम में कुछ क्षण बिताने का अवसर मिलता है। थोड़ा उनके साथ में बैठ लिया, उनका गुणगान किया, वो भी समझ हो गए तो कहने क्या है, नहीं तो परंपरागत तो बहुत अनंत बार किया, उसमें तो क्या दम है। और दान भी औषधि शास्त्र अभय आहार चार प्रकार के दान कहे हैं। आपको शायद ही ख्याल होगा कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो दानोपदेश नाम का अधिकार है उसमें सिर्फ आहार दान की ही महिमा बताई गई। ख्याल में है, वास्तव में जो अपन कहते हैं ना कि ये आप यहाँ दान निखावें या संस्था में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको स्पॉन्सर करें, ये दान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल शुद्ध इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट समझते, पैसा जमा करके उसका रिटर्न अपने को बैंक में जमा कर देते हैं, FD बना लेते हैं, तो ये दान कर देते हैं। कोई सूचना है?
थोड़ी सी पानी कमरे
टंकी खाली हो जाएगी फिर समस्या आएगी। देखो ये भी चरणानुयोग का अंग है भाई साहब, ये भी नैतिक नियम है हमारे। अभी अंदर से जैसे मुझे आज मेरे दो ही पीरियड है ना, अभी तो आज और दोपहर के, कल से तो फिल्म बदल जाएगी, एक्टर भी बदल जाएंगे। नैतिकता है, वो अनंत दंड आएगा तब मैं बात करूंगा, कोई हो तो चले जा भाई, संकोच नहीं करे, भूल हो जाती है, भूल थी जाए से छोरों बैठो से चेक कर लेना भाई, और आजू बाजू के लिए आवाज आ रही हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जयपुर का विद्यालय खुला और काफी मेहनत बंबई वालों ने भी उसके साथ में की, बंबई का भी बहुत सपोर्ट, मुमुक्षुओं का सबका मिला, सारे देश का मिला, तो आज आपको उसका रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो दान क्या हुआ? देवी लाल जी है, आपने आजीवन एक विद्यार्थी का लिखाया 2 लाख 5 लाख जितना भी हो, तो आपकी जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो दान तो नहीं है ना, अपने खुद के बच्चे को पढ़ाना तो आपका लाभ की पूर्ति है। ऐसे समाज के बच्चे को आपने पढ़ाया तो उसके रिटर्न में समाज को ही विद्वान मिला, समझ में आया ना? तो ये वास्तव में दान नहीं है, ये सोशलाइजी है, सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम है, जिसका एक व्यवस्थित किसी संस्था के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जिसका मैनेजमेंट किया जाता है। इसी तरह सब में लगा लेना आप, अस्पताल खोली, समाज को लाभ मिल रहा है, अरे मंदिर बनाया, मंदिर का टिकट लेते ही नहीं लेते आप? देखो एक बहुत प्रेरणादायी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कोर्स 2 पीरियड में हो जाएगा इसलिए मैं इसमें इसको शामिल करता हूँ। एक नगर इंदौर है समझ लो, वहाँ की एक बात है, इंदौर की घटना है, एक मंदिर है, समाज उसका मैनेजमेंट पंचायत के हाथ में था, मुमुक्षुओं के हाथ में नहीं था, लेकिन समझ लो सक्रिय उसमें एक्टिविटीज जो है मुमुक्षु ही करते थे, खूब दान देते, खूब प्रभावना होती, 20-20 साल समझ लो 30-30 साल उसमें मुमुक्षुओं ने भी लाभ लिया, सारी समाज ने लाभ लिया। फिर कोई ऐसी प्रसंग बना, ऐसा घटना घटी कि मुमुक्षुओं को आउट कर दिया गया, जैसे कि सारे भारत में परंपरा है। समझ में आया? तो हमारे एक परिचित मुमुक्षु साथी बोले, यार अपन ने इतना दान दिया, इतना अपन ने खर्चा किया इस मंदिर में, सारा का सारा पानी में गया। उनके ऐसे भाव हुए, मैंने तुरंत उनकी इस बात का निषेध करते हुए इनसे कहा कि जब तुमने दिया था तब तो पुण्य माना था, और अब पछता के पुण्य के ऊपर पानी क्यों फेरते हो? आपने इस मंदिर में सिविल लगाए या नहीं लगाए? आपने इस मंदिर में जिनवाणी सुनी या नहीं सुनी? आपने इस मंदिर में वितरांग देव के दर्शन पूजन किए कि नहीं किए, तो कैसे पानी में गया? अरे अब व्यवस्था बदल गई तो वो तो उनका तो वरदान है कि आपको एक स्वतंत्र बनाने का चांस दिया, नहीं तो पहले अगर कोई कहता कि हमें मंदिर बनाना है तो समाज के लोग कहते वो तो है, गाय को दूसरा बनाते, अलग क्यों बनाते, अलग नहीं होना चाहिए, एकता के उपदेश होने लगते तो बना ही नहीं पाते। ये तो उनने जो व्यवहार किया जो आज आपको थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन कल को आप उन्हें धन्यवाद देंगे जब आपके मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। और ऐसे ही हुआ। कहने का आशय ये है कि जिन मंदिर के लिए, जिन वाणी के लिए जो कुछ भी हम देते हैं राशि के माध्यम से, वास्तव में उसमें ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम ही काम करता है। लेकिन अगर भाव इस प्रकार का होए कि सब जीव इसका लाभ ले रहे हैं, ख्याल में आए ना, तो फिर वो एक व्यवहार से दान में लिया जाता है। लेकिन आरंभ में तो दान के प्रकरण में मुनियों को आहार दान देने का ही पूरे दानोपदेश अधिकार में उसकी महिमा गाई। और आप श्रावक धर्म प्रकाश जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का संकलन है, उसमें जब आप दान का वर्णन पढ़ेंगे तो गुरुदेव ने इतनी समझ लीजिए उत्साह भरी भाषा में वर्णन किया है, श्रावक को ऐसा लगता है ओ मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरे आंगन में कल्प वृक्ष आया है, आज मेरे आंगन में साक्षात मोक्ष मार्ग आया है, रत्नत्रय पधारा है और मेरे निमित्त से दिया गया आहार इसके रत्नत्रय की वृद्धि में, इसकी स्थिरता में निमित्त बनेगा, जो हमारा महाभाग्य। ऐसा बहुत बहुत श्रावक को प्रमोद आता है। अब वही मुनिराज ही एक अपने राग की पूर्ति में थोड़े बहुत निमित्त बन जाते हैं। केवली भगवान मन तो मुद्रा है, साथ साथ भी केवली भगवान है, तुम क्या करोगे ना, आहार दान तो दोगे नहीं, उन्हें कोई चीज की जरूरत तो है नहीं, उन्हीं से लोगे दान। अपन केवली भगवान से दान लेते कि नहीं लेते हैं? ज्ञान दान लेते हैं और शास्त्र दान लेते हैं, समझ लो वाणी के रूप में, और अभय दान लेते हैं जो अपने भाव का अंत करने का मार्ग बताते हैं, शाश्वत सुखमय जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, तो अपन अभय दान लेते हैं। एक मुनिराज ऐसे हैं जिन्हें समझ लीजिए अपन कहें हमारा सौभाग्य कि उन्हें अभी आहार का विकल्प टूटा नहीं है, तो निर्दोष आहार वो लेते हैं और श्रावक उन्हें निर्दोष आहार देके अपने हृदय में जो रत्नत्रय के प्रति, रत्नत्रय धारियों के प्रति जो भक्ति है, उस राग की पूर्ति का एक चांस थोड़ा सा श्रावक को मिल जाता है। तो आप देखिए मुनि आए तो उसमें रत्नत्रय देखना, ये है चरणान योग से वितरागता को देखना। अपना मूल मूल तो मुद्दा तो ये है ना ऐसे इसमें देखिए कषायांश कम हो जाने से गृहस्थ दसों दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता। इसे दिग्व्रत कहते हैं। दिग माने दिशाएं और एक लिमिट के बाहर जाने से विरक्ति हो गई, इसका नाम विरत, दिग्व्रत। जैसा कि कल मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या होता है, इसका वर्णन चरणानि योग में होता है, क्रिया की सापेक्षता क्यों होता है वो भी उसी में देखिए चरणानि योग में आप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसे चैतन्य तत्व का रस लग गया वो उसे और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है और उसमें वृद्धि करना चाहता है, और ये बाहर की झंझटें जो है आने जाने की, वो क्यों जाएगा आएगा, जो भी जीवन की आवश्यकताएं वो अपने नगर में पूरी हो जाती। हमको याद ही नहीं आता कि कभी नासिक शहर जाने का मौका मिला हो। हाँ शहर क्रॉस करके गजपंथा जाने का जरूर प्रसंग बनता है, वो नासिक पूरा क्रॉस करना पड़ता है, समझ में आया? लेकिन 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर उधर दोनों दिशाओं में, उससे ज्यादा जाने की इच्छा ही नहीं होती, समय नहीं मिलता, भाव ही नहीं आता। बात समझ में? यानी अगर हम ओवर लिमिट जाते हैं तो सिवाय विषय कषाय की पूर्ति के अलावा और दूसरा कोई कारण नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी मार्केट है वो प्राय घरों के पास में ही रहता है। समझ में आया? है? जो जीवन की आवश्यक चीजें हैं वो घरों के पास में रहती हैं, और फिर यहाँ पर दिग्व्रत है जो जीवन पर्यंत उल्लंघन नहीं करे, समझ लो भारत के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नियम ले लिया, ये दिग्व्रत हो गया। अब क्यों जाएगा भारत के बाहर सिवाय घूमने फिरने के, विषय कसाय के, और क्यों जाएगा? अब वो परिणाम ही नहीं रहा। समझ में आया? और जाने में जो झंझटें होती हैं, जो एक वो कहावत है, परदेश कलेश नरेश न हो। राजा भी अगर परदेश में जाएगा तो उसके राज्य और राजमहल जैसी सुविधाएं तो राजा को भी नहीं मिलेंगी। अब प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है, वो उसकी ड्यूटी है, लेकिन उसको भी आप देखो कितनी हार्ड ड्यूटी करनी पड़ती है, 18-18 घंटे वहां भी। हम लोग तो बहुत सोचते हैं को जेकलेट नहीं होता होगा, दिन रात का चक्कर, गए और दो दिन काम किया और उनसे मिले, उनसे मिले, वो मीटिंग की, वो मीटिंग की, वो समझौता किया और चार दिन में वापस आ गए, तो सब लोग यहाँ आके फिर जेकलेट रिकवर हो जाता होगा, जो भी होता होगा। आप समझ में क्या कहना चाहता हूँ? आवश्यकता से अधिक क्षेत्रांतर गमन भी आकुलता बढ़ाने में ही निमित्त बनता है। आपके साथ सिविल में जाना है, परिवार कल्याणक में जाना है, तो अच्छी बात है, उसके लिए आप जाइए, तो वो आप उसके नियम में शामिल रख लीजिए, हैं? फिर ये तो भारत में जहां भी सिविल हो जाओ, परिवार कल्याणक वहां जाइए। फिर एक बात है, जैसे जैसे 11 प्रतिमाओं में आप ऊपर की प्रतिमाएं चढ़ेंगे, समझ में, आरंभ त्याग प्रतिमा वाले को मेरे हिसाब से बाहर जाने लीजिए, अति आवश्यक हो गए तो ही जाना, नहीं तो उसका आरंभ त्याग नहीं पड़ेगा, उसका आरंभ परिक्रम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आकुलता बढ़ेगी। अब एक पंच कल्याणक में एक बहन जी बोली, हम तो साहब जहाँ सब लोगों का भोजन बनता है उसी में भोजन करते हैं, उसके बाहर कुछ करते ही नहीं। और समझ लो वो अपने मेहमान थे, हम भी मेहमान थे, लेकिन होस्ट मेहमान थे, तो उनसे वो कहते नहीं बना, लेकिन इशारा को कर ही दिया, अगर आपका इतना ऊंचा नियम है तो आप यहाँ आए का हुआ। समझ में आए? देखो सेटिंग देखना, जिसके परिणाम इतने उच्च कोटि के हो जाते हैं तो उसके आत्महित के लिए वो स्वयं सेल्फ डिपेंड हो जाता है। क्या फिर वो जिनमानी पर है, जिनमानी के माध्यम से वितरकता का पोषण करता है, गांव में ही मंदिर है, गांव में ही जिन प्रतिमा है, गांव में ही स्वाध्याय है, गांव में ही पूजन है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। और आज तो मैं कहता हूँ इस विज्ञान को कम से कम इस मामले में तो धन्यवाद देना चाहिए कि अमेरिका में बैठे बैठे 30-40 लोग यहाँ से शिविर का लाभ ले रहे, उन्हें जाने आने की जरूरत ही नहीं। अब तो ये बहुत आसान हो गया दिग्व्रत देशव्रत। समझ में आया? अब वहाँ के अमेरिका वाले यहाँ जो आए हैं, जो भारत में रुकेंगे, यहाँ की हवा में सांस लेंगे, यहाँ का अन्न खाएंगे, यहाँ की मोटर में चलेंगे, यहाँ की फ्लाइट में चलेंगे, तो वो हिंसा का दोष लगेगा। आप माफ करना, ये अपनी भूमिका में होता है, इसलिए आप आना बंद मत करना। लेकिन जो क्योंकि जो आयोजक है वे नहीं आएंगे तो सिविल लगाएगा कौन? लेकिन बाकी लोगों के लिए तो उन्होंने उपकार किया है, जो नहीं आ पाए तो उन्होंने यही बैठे बैठे फोटो दिखा दी कि आप यही लाभ ले लो। खैर ये तो राग की मंदता की बात है, तो ये कारण ये है कषायान कम हो जाने से, मूल तत्व उसके भीतर ये है। और भी दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमा को घड़ी घंटा दिन सप्ताह माह आदि काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर लेना तो देशव्रत, दिग में भी भाग करना, दिशाओं में भी विभाग करना अपने लिए बहुत इजी है। जैसे कि मान लीजिए आप अष्टानिका में यहाँ देवलाली आए, तो आसानी से आप ये समझ लो मर्यादा कर सकते हैं कि 8 दिन तक मैं यहाँ के बाहर नहीं जाऊंगा। ख्याल में आए ना, सर भोजन यही है, नाश्ता यही है, चाय पानी यही है, सब कुछ मतलब इस कंपाउंड में ही है और आपका कमरा भी यही है। तो आप तो ये समझ लीजिए 200 मीटर का क्राइटेरिया का भी आप वो नियम कर सकते। उससे फायदा क्या होगा कि बाहर जाने संबंधी जो राग था वो आपका टूट गया, तो उस राग जन्य जो 5 पाप होते उनसे आप बच गए। शरणागत के ग्रंथों में यहाँ तक कहा है कि मर्यादा के बाहर वो व्यक्ति महाव्रती जैसा हो गया। क्या मतलब हमें भारत के बाहर नहीं जाएंगे ऐसा नियम लिया तो भारत के बाहर का राग टूट गया, तो भारत के बाहर की हिंसा, भारत के बाहर की झूठ, भारत के बाहर की चोरी, खुशी, परिग्रह, इन सब पापों से आपका सर्वथा त्याग हो गया। राग आम से ही नहीं रहा ना, पाप का जन्म तो राग द्वेष से होता है। ये एक बहुत मनोवैज्ञानिक और बहुत व्यवस्थित जीवन शैली है। समझ में आया, बहुत आनंददायक शैली है, सहज होती है। सबसे बड़ी बात तो ये धर्म का मामला भैया, कोई कोर्स पूरा करने के लिए कि कोई जिन्मान में लिखा है इसलिए हमें पालन करना चाहिए, कोई मजबूरी है, तो सबसे बड़ा प्रदर्शन के लिए, यज्ञ के लिए, ये चीजें तो इसमें होती नहीं। अगर किसी को दूसरों को दिखाने का भाव हो गए तो समझ लो उसका तो अभी संयुक्त की भी पात्रता नहीं। ऐसा है भाई, तो दिव्रत की बांधी हुई विशाल सीमा, नगर के बाहर नहीं जाएंगे, 10 दिन 10 लक्षण है तो नगर के बाहर नहीं जाएंगे। या समझ लिया, अगर एक बार बाजार गए और 4 दिन की सब्जी ले आए, 1 सप्ताह की सब्जी ले आए, अब जाने का कोई काम नहीं है तो 1 सप्ताह तक बाहर नहीं जाएंगे। देखो जाते नहीं है लेकिन नियम भी नहीं है तो वो बात नहीं होती। अभिरमण रूप जो हिंसा है वो धारा चलती रहती है, वो वासना बनी हुई है। जान क्या पता मौका पड़ गया तो। ऐसे बहुत से लोग हैं, अपन सभी हैं, बहुत से मामलों में समझ लो एक ही भूमिका तो सभी की है। यहाँ बैठने से क्या होता है, है? रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं। सालों हो जाएंगे सिनेमा नहीं जाएंगे लेकिन सिनेमा देखने का त्याग भी नहीं। समझ में आया ना, तो इसका मतलब है वो धारा अंदर चल रही है, रात की धारा चल रही है। तो ये चरणांक्योप जो है ऐसी दिशा समझो, नहीं हो सके तो इतना करना, ये कि पूरा नहीं हो सके तो आंशिक त्याग करना, महाव्रत नहीं हो सके तो अणुव्रत लेना, अणुव्रत में भी ऐसी मर्यादाएं ले लेना, टेम्परेरी भी आप ले लेना, श्रद्धान टेम्परेरी नहीं होता, तत्व निर्णय टेम्परेरी नहीं होता कि मैं जब तक देवलाली में रहूंगा तब तक क्रमबद्ध पर्याय मानूंगा और अपने घर जाऊंगा तो मैं पर्याय पलट सकता हूँ ऐसा मानूंगा। शुद्ध श्रद्धा और चारित्र में कितना, सिस्टम में कितना अंतर है। या 10 दिन तक अभी 10 लक्षण चल रहे हैं तब तक तो मैं मानूंगा कि आत्मा के आश्रय से ही धर्म है और धर्म से ही जीव सुखी है। 11वें दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बड़ी बंधन में जकड़े थे तो अभी आजाद हो गए और अब तो मस्ती से खूब खाओ पियो मौज करो तो जेल में से निकले हो जाए। हम लोग तो कहते हैं नियम से 10वें दिन, तो ये बात कहते ही है कि 10 दिन आपने संयम से बिताए, यदि आपको अच्छे लगे हो तो 11वें दिन कंटिन्यू करें। पूरा नहीं करें, मान लो एक आसन नहीं करें तो 2 आसन का नियम ले रहे, रात्रि भोजन के त्याग का नियम ले रहे, प्रवचन अच्छे लगे हो तो स्वाध्याय का नियम ले रहे। ख्याल में आया ना, तो ये आगे बढ़ने की प्रेरणा इनसे मिलती। तीसरा बड़े काम का है तो सभी काम के लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में ये बहुत ख्याल रखने की चीज है। बिना प्रयोजन हिंसा भी पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है। दंड माने प्रवृत्ति, एक्टिविटी, और वो काय से होती, किस माध्यम से होती, मन, वचन और काय, ये 3 के अलावा हम करते क्या है। देखो वास्तव में आत्मा में तो योग और उपयोग ये 2 काम होते हैं। क्या बोला, योग और उपयोग, दत्तदेशों का प्रकंपन और उपयोग में वहां उन्होंने पुण्य पाप को भी शामिल किया, क्या शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग इसको भी शामिल किया, ठीक है। उसके बाहर तो आत्मा निकलते ही न उपयोग आत्म प्रदेशों को छोड़ के बाहर जाता है, न योग आत्म प्रदेशों को छोड़ के बाहर जाता है। तो मन वचन और काया में वास्तव में आत्मा का प्रवेश होता ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं दो दिन से कह रहा हूं कि चरणान योग का जन्म निमित्त निमित्तिक संबंध वाली व्यवस्था से ही होता है। उपादान से देखा जाओ तो शरीर की क्रिया स्वतंत्र है, आत्मा के परिणाम स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये दंड माने मन वचन काय की क्रिया, मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसमें जीव के भाव निमित्त होते, योग निमित्त होता है। और अन अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, और अन माने नहीं। तो बिना प्रयोजन के, प्रयोजन कौन सा, यहाँ प्रयोजन का क्या मतलब लगाना, अरे लौकिक प्रयोजन की बात, लाइट जलाई है तो पढ़ने के लिए जलाई, नल चालू किया है पानी चालू किया है तो स्नान करने के लिए किया है, पीने, ये प्रयोजन है। या कोई आत्महित के प्रयोजन या सम्यक दर्शन के प्रयोजन की बात नहीं है। सम्यक दर्शन के प्रयोजन में तो दंड का कोई स्थान ही नहीं, यानी मनोवचन काय की क्रिया ही नहीं, उसमें तो दृष्टि परखने की बात ख्याल में आए ना। लेकिन ये तो व्यापार का प्रयोजन है, विषय कषाय का प्रयोजन है, राग द्वेष की पूर्ति का प्रयोजन है, ये जीवन में जब रागांश है तो ये भी तो प्रयोजन है ना। तो प्रयोजन सहित अगर क्रिया होती है और उसमें जो मर्यादा होगी तो वो अणुव्रतों में जाएगी, गुण व्रतों में जाएगी, उसमें जो मर्यादा होगी। लेकिन बिना प्रयोजन के हो रही है तो इसका मतलब इसको विवेक भी नहीं। युवक जी साहब तो इस मामले में इतने ज्यादा कठोर हैं भी बोलता हूँ, महापुरुष कभी थे नहीं होते, ख्याल में आए ना। तो वो हमेशा अपनी वाणी और विचारों के माध्यम से शाश्वत जीवंत रहते हैं। वो इतने कठोर हैं तो एक गिलास पानी भरे और आधा पिए और आधा फेंक दे, ऐसे आदमी को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बोलो आप, ये बात उनके अलावा और हमारे समझ लो इतने वरिष्ठ विद्वान हमने सुने बहुत से, लेकिन वो ही कह सकते हैं और उन्हीं की लोग सुन सकते हैं। क्यों, इसमें नुकसान क्या हो गया, ये बड़ा पाप हो गया क्या, ये सम्यक दर्शन के लिए ऐसी शर्तें लगाना, ये इसमें तुक क्या है। देखो भैया, उनका ये जो निरूपण है ये कोई सैद्धांतिक विवेचन नहीं कर रहे हैं, ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये विवेक की बात है। कि जिसको इतनी लापरवाही है, जिसके परिणामों में इतना भी विवेक नहीं है, तो वो आत्महित की बात सोचे और करे ये कैसे संभव। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, बिना प्रयोजन हिंसा की पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है, और उसके त्याग को अनर्थ दंड विरत कहते। जिसे समझ लो रागांश बहुत पतले पड़ गए हैं, रागांश कमजोर हो गया है, उसको ऐसा तीव्र कषाय या इतना अविवेक कि ये लाइट जली है तो जली रही है। आप जानते हैं कभी कभी ऐसा वो आयोजन किया जाता है कुछ संस्थाओं या सरकार के द्वारा, सप्ताह में एक घंटे सब लोग बिजली बंद रखें, ऐसा चलता है। सप्ताह में एक आप देखिए, भारत में समझ लीजिए लगभग 125-130 करोड़ लोग हैं, और 130 करोड़ में आप समझ लीजिए 50 करोड़ घर हैं। 50 करोड़ घर में एक घंटा बिजली जलती तो कितनी यूनिट बिजली जलती होगी, तो एक घंटा आपने बंद रखी तो कितने बिजली की बचत हुई, उससे आप एक गांव में, कितने गांव में जहां पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते, वहां बिजली पहुंचा सकते। क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा 3 साल तक इसलिए मैं इन मामलों में भी बहुत संवेदनशील हूँ। ख्याल में आए जल्दी मेरा अटैचमेंट हो जाता है। देखिए इसमें राष्ट्रीय संपत्ति बचेगी, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, ये तो लौकिक बात है। लेकिन आप अगर आवश्यकता से अधिक बिजली नहीं जलाते हैं तो बिजली जलाने में जितनी हिंसा होती है आप उससे बचेंगे। तो बिजली जलाने में जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों के द्वारा जो पाप किए जाते हैं पैसा कमा के, हम इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बिना प्रयोजन बिजली जलाना बंद कर दें तो उतने उतने हमारा उनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। जैसे अपने अपनी रक्षा देश की बात नहीं है, ये अपने परिणामों में हम कम से कम आवश्यकताएं रखना और आवश्यकता से अधिक वेस्टेज नहीं होना। सबके लिए अभी देश में इतना सूखा पड़ा है, यूपी में 50 जिले सूखा ग्रस्त घोषित, अपने महाराष्ट्र में भी बहुत प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, गायों के चारे की प्रॉब्लम है, और हमारी यहाँ सोसाइटी में खड़ी खड़ी कारें धुल रही है आराम से आधा आधा घंटे तक, एक एक घंटे तक। एक आदमी को कह दिया 100 रुपए दूंगा, वॉचमैन को तू धो देना, वॉचमैन को 100 रुपए मिल गए तो उसका भला हो गया। ये आपने कितना पानी बर्बाद किया, वही पानी की अगर हम बर्बादी रोक देवे तो हमारा बेलत गांव तो प्यासा नहीं रहेगा। सच कहता हूँ मैं, बहुत मतलब अंदर में पीड़ा भी होती। लेकिन आप वृत्ति हो गए नहीं हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए नहीं हो, अंदर के परिणाम कैसे हैं, लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते तो इतना विवेक हम रख सकते हैं। उसमें हमारा खुद का जरा सी कार दो चार दिन महंगी दिख जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप सरकार ने 3 बार धोते उसके बदले 1 बार धो, 1 बार धोते हैं तो 15 दिन में 1 बार धो, ख्याल में आए। ये है सब, ये इसमें आता है अनर्थ दंड में, पानी बह रहा है तो बह रहा है, बिजली जल रही है तो जल रही है, टीवी चल रहा है तो चल रहा है। मतलब हम यूज करें तो मंद पाप का बंद होएगा, और अनयूज वो होता है तो तीव्र पाप लगेगा। उसमें अभिवेक भी साथ में जुड़ गया। व्रती श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, एसी चला दिया और अपन फोन आया तो बाहर चले गए, और उसने कहा कि नहीं आप जल्दी आओ तो अपन फौरन गाड़ी उठाई तो चले गए, अभी भी चली रहा है। तो घर का पैसे का भी नुकसान हो रहा है और बिजली का भी नुकसान हो रहा है। ये जितने प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे पानी हो, ख्याल में आए, चाहे बिजली हो, खनिज पदार्थ हो, तो जितना हम उसका दोहन कर रहे हैं आप समझ लीजिए हम जल्दी से जल्दी खग में काल की ओर बढ़ रहे। हम पृथ्वी को उतना समझ लो वो बंजर बनाने में सहयोग दे रहे, ऐसा है भाई। पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना, अभी तो बहुत जागरूकता बढ़ गई। अभी तो मैंने नहीं देखा कि लोग अपने लोग घास पे चलते हुए ख्याल में आए ना। मैंने अमेरिका में इतनी अच्छी अच्छी घास देखी घरों के सामने, लेकिन घास पर चलते किसी को नहीं देखा। मैंने कहा यहाँ के लोगों में इतना विवेक है, घास पर ही चलते, वो बराबर बात वे बनाएंगे पक्के सीमेंट के, उस पर चल के घर के अंदर भी जाएंगे, दोनों तरफ घास लगी हुई है, बीच में वो जाने का रास्ता उन्होंने बना रखा है। अब वो क्यों बना रखा है, उसकी दरमियान योग चरणान योग की मैत्री है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक समझ लो सिटीजन सिस्टम डेवलप वहाँ हुआ। शुरू में डंडे के बल पर करना पड़ता है, लेकिन म्यूनिसपैलिटी आगे जुर्माना करेगी और फिर बाद में वो चीज हैबिट में आ जाती है। और अपन लोग भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ के नियमों का पालन करेंगे, और यहाँ आएंगे तो फिर उसी रंग में रंग जाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। तो बहुत से लोगों को देखा घास पे बढ़िया बैठे हरी घास पे, तो घास उखाड़ रहे हैं और घास खा रहे हैं, दांतों से चबा रहे हैं। क्यों भैया? पूर्व का संस्कार है कि भविष्य की तैयारी है। आदि कार्य नहीं करता, यानी तस हिंसा का तो वो त्यागी है ही, पर अप्रयोजनीय सावर हिंसा का भी त्याग करता है बिना प्रयोजन। और राम से सारी प्रवृत्तियों में भी उसकी वृत्ति नहीं रहती, इनसे भिड़क रहता है। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम है। अभी तो कच्चे तेल के रेट काफी डाउन हो गए है, लेकिन बाहर से 80% तो हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है, और हमें यहाँ से 1 किलोमीटर भी जाना पड़े तो हम पैदल नहीं जाते। मेरे ख्याल से तो साइकिल रखना चाहिए, ख्याल में आया ना। और देवलाली केंद्र तक जाना होगा तो साइकिल से जाना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन हम जैसा हो तो बात दूसरी है। और उससे आपका व्यायाम भी होगा, और 2-3 किलोमीटर आप साइकिल चलाओगे तो व्यायाम भी होगा, और पेट्रोल से बचोगे, पेट्रोल वाली हिंसा से बचोगे आप। तो ये सब हमें राग, तीव्र राग से बचने के रास्ते चलना योग दिखाता है। केवल विषय की दृष्टि से नहीं, बल्कि हम अपने जीवन में इसे यथा संभव अधिक से अधिक अपनाए। ऐसी मैं अपने स्वयं से भी आशा रखता हूँ, आपको भी आग्रह करता हूँ, और इसी भावना से अपनी बात पूरी करता हूँ।